जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय श्रीमद भगवद्गीता की जय गौर निताई की जय श्री शिव राधा श्याम की जय बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल श्री शरीर व्यस्त और आत्मा मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ जय श्री कृष्ण ना शास्त्र पर ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर हरि हरि बोल जय श्री राधे कृष्ण हर हर महादेव जय माता की। तो फ्रेंड्स आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और जो हम लोगों को पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स हम सब अपने आध्यात्मिक यात्रा की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और इस प्रक्रिया में हमारा सरल भगवद गीता का कोर्स भी आरंभ हो चुका है जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में, है ना। तो आपके वर्सेस में जाने से पहले हम श्री कृष्ण भगवान का आह्वान करते हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी बुद्धि में परमात्मा विराजमान हो, अपनी विशेष कृपा हम पर बरसाएं ताकि हम सब उनकी वाणी को, उनकी इंस्ट्रक्शंस को और उनके गीत को अच्छे से समझकर अपने जीवन में अपना कर खुशी खुशी अपने ड्यूटीज कर सकें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान से हम सब मिलकर यही विनम्र प्रार्थना करते हैं कि इस नए साल में हम सब मिलजुल कर भगवान का नाम और जोर शोरों से ले पाए, है ना। जो भी हमें कमियां थी, जो भी हम गलतियां कर रहे हैं तो हम उनको ना दोहराएं, है ना। यही हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आप हमें अपनी गाइडेंस दो कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। क्योंकि हम इस दुनियादारी में रहते हुए बहुत कुछ भूल जाते हैं, आपका नाम लेना भी भूल जाते हैं। तो पहले तो भगवान से क्षमा मांगनी है और भगवान से प्रार्थना करने कि हम नित्य निरंतर भगवान का नाम लेते रहें और उनके रास्ते में बस इस तरह ही चलते रहें और जोरों शोरों से, ताकि जो खुशी का और जो शांति का अनुभव हम कर रहे हैं, है ना, उसके लिए हम भगवान को धन्यवाद दे पाए, है ना। यही हमें विनम्र प्रार्थना करनी है भगवान से। तो स्टार्ट करते हैं हरि बोल। तो आप सबको पता है फ्रेंड्स कि हम सरल भगवद गीता का कोर्स हमारा कर चुके हैं, है ना। और आजकल हम अध्याय 2 अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली ये अध्याय कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हमने 2 वर्सेस किए थे, पहले उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 61 और 62 किया था हमने। तो 61 वर्ष में हमने समझा भगवान हमें 55 वर्ष से हमें स्थिर बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो परमात्मा के साथ इंटरनली स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं, ऐसे महात्मा जन लोग जो होते हैं, ऐसे स्थिर बुद्धि लोगों के भगवान लक्षण बता रहे हैं 55 वर्ष से, है ना। तो 61 वर्ष में भी और आगे के सारे वर्षों में भगवान हमें स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं वही बता रहे हैं, है ना। तो 61 वर्ष में भगवान हमें समझा रहे हैं कि इंद्रिय संयमन कैसे करना है ना। तो भगवान हमें इस वर्ष में हमें ये समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को मुझ में लगाता है, मतलब भगवान कह रहे हैं कि अपनी जो चेतना है ना उसको मुझ में स्थिर करो, ऐसा जो कर लेता है वो स्थिर बुद्धि कहलाता है। फ्रेंड देखो हमें बार बार ये बात आती है ना कि हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए, भगवद गीता में ये बात बहुत बार आती है ना। लेकिन हमें इंद्रियों को वश में कैसे करना है इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमें फोकस क्या करना है, अपनी कॉन्शियसनेस को भगवान में स्थिर करने के बारे में सोचना है। मतलब जो हमारा मन है, जो दुनियादारी में जो घूमता रहता है ना, उस मन को भगवान में स्थिर करने की हमें जरूरत है। बस हमें इम्पोर्टेंट है कि जो हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताई जाती है ना, हम उनको भक्ति भाव से करें और क्वेश्चन ना करें कि हमें क्यों करना है, मेरे पास टाइम नहीं होता, ये सारी बातें हमारे मन की बनाई हुई है ना। तो जो बातें हमें बताई जाती हैं हमें बस सिंसियरिटी से वो बातें करनी चाहिए, है ना। फिर ये जो इंद्रियों को वश में करना है, मन को कंट्रोल करना है, ये सब बातें ऑटोमेटिकली हो जाती है ना। तो हमें फोकस करना है, अपनी कॉन्शियसनेस अपनी चेतना को स्थिर करना है। जब हम भगवान से नहीं जुड़ते तब तक हम इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते फ्रेंड्स। इंद्रियों को केवल भगवान श्री कृष्ण के भक्ति से ही वश में किया जा सकता है ना। फिर 62 वर्ष में हमने समझा कि क्रोध कैसे आता है। देखो फ्रेंड जब हम बहुत ज्यादा किसी पर्सन के बारे में या किसी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में सोचते हैं तो उस डिजायर के बारे में सोचने से ना हमारी उसमें ना अनुरक्ति हो जाती है, आसक्ति हो जाती है। फिर अनुरक्ति से कामना उत्पन्न होती है, और जब कामना हमारी पूरी हो जाती है तो ग्रीड आता है, लोभ आ जाता है, और ज्यादा भोगों को भोगने की इच्छा आ जाती है ना। और जब हमारी कामना में कोई प्रतिरोधक आ जाता है, कोई बाधा आ जाती है, तो फिर हमें क्या होता है, फिर गुस्सा आ जाता है, तो मतलब क्रोध आ जाता है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो हमें सोचने की आदत पड़ी है ना, उसको फ्रेंड्स हमें प्रभु के चिंतन की तरफ लेकर जाना है ना। दुनियादारी में जो हम एक्सपेक्टेशंस रखी होती है हम लोगों ने कि मेरा बेटा ऐसा करे, मेरा हस्बैंड ऐसा कर ले, मेरा रिलेटिव ऐसे कर ले, तो इन सब को छोड़कर हमें अपना ध्यान परमात्मा में स्थिर करना है ना। ये बातों में ध्यान देना है कि मैं अपना नाम जाप कब करना शुरू करूंगी, है ना। अगर मैं नाम जप कर रही हूँ तो अपने आप को टारगेट देना है कि मुझे कम से कम 8 माला करनी ही करनी है ना। 8 माला कर लेते हो तो टारगेट देना है कि मुझे कम से कम 11 माला पे आना है। 11 माला करने शुरू हो जाते हो, मतलब 1-2 महीने हो गए आपको करते हुए, तो अपने टारगेट को 16 माला में लेकर आना है। टारगेट देना है खुद को कि कब मुझे भगवत गीता की बातें समझ आएंगी, मुझे कब भोग लगाना शुरू करना है। एक बार भोग लगा रहे हो तो सोचो कि मुझे अब भगवान को हमेशा ही भोग लगा कर ही प्रसाद रूप में भोजन ग्रहण करना है ना। सोचो कि मुझे क्यों नहीं भगवत गीता की बातें समझ आती है, तो क्यों ना मैं पॉडकास्ट में जो हमारे जो सत्संग है जिनकी रिकॉर्डिंग, तो क्यों ना मैं उनको सुन लूं, रोज का एक सत्संग सुनने शुरू कर दो, है ना। कब मेरी सत्संग साधना सेवा सदाचार की डिजायर्स कब बढ़ेंगी, तो हमें इन डिजायर्स को शिफ्ट करना है ना। काम तो देखो करना है हमने, अपने घर का काम करना है, बच्चों से रिलेटेड सारी अपनी जो ड्यूटी है हमारी वो कंप्लीट करनी है ना। लेकिन फिर उनसे अटैच नहीं हो जाना इन चीजों से कि नहीं नहीं मेरा बेटा ISC हो जाएगा तभी मैं मानूंगी, है ना, मेरा हस्बैंड को प्रमोशन जब तक नहीं मिल जाएगी तब तक मैं उनको तंगी करती रहूंगी, है ना। तो इन चीजों से अपना ध्यान हटाकर प्रभु की सेवा में अपने मन को लगाना है ना। तो मतलब मटेरियल डिजायर्स टू स्पिरिचुअल डिजायर्स जैसे जैसे हमारी बढ़ती जाएंगी, वैसे ही धीरे धीरे हम ऑब्जर्व करेंगे फ्रेंड्स की परसेंटेज में हमारा क्रोध घटना शुरू हो जाएगा ना। देखो एक राइट एप्लीकेशन भी होता है एंगर का, है ना, जिसमें क्रोध आता नहीं है, लेकिन क्रोध का प्रदर्शन करना कभी कभी समाज कल्याण के लिए और कभी कभी सेल्फ डिफेंस के लिए भी जरूरी होता है ना। जिसमें आपको पता होता है मैं क्रोध कर रही हूँ, आपके कंट्रोल में होता है गुस्सा, लेकिन ये क्रोध उस क्रोध की बात हो रही है भगवद गीता में, जिसमें एक व्यक्ति अपने आप में नहीं रहता ना, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करता है, तो भगवद गीता में उस क्रोध की बात हो रही है जिसमें एक व्यक्ति का कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता अपने आप, है ना। लेकिन जब एक व्यक्ति स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो जाता है तो उसको ये समझ आ जाता है कि मुझे कब क्रोध करना है कब नहीं करना है। कई बार वही बात है ना, क्रोध को करना भी जरूरी होता है, चाहे वो समाज कल्याण के लिए हो रहा है या फिर सेल्फ डिफेंस के लिए, है ना, आत्म सुधार के लिए भी कई बार अपने आप पे हम क्रोध कर सकते हैं कि यार मैं क्यों नहीं इतना अच्छा कर पा रही हूँ, क्यों नहीं जो मेरे अंदर जो विकार है क्यों नहीं मैं उनको कम कर पा रही हूँ, और जो भी काम क्रोध लोभ मोह इन चीजों में जो फंसी रहती हूँ क्यों नहीं मैं इन चीजों से बाहर आ पा रही हूँ, है ना, ताकि मैं अपने आप को मोटिवेट कर सकूं और अपना बेस्ट दे सकूं लाइफ के हर एस्पेक्ट में, है ना। तो इस तरह से भी हम अपना आत्म मंथन कर सकते हैं। हाँ जी नीना जी, आप श्लोक पढ़ सकते हो, हरि बोल 63 श्लोक पढ़ना हमने, हरि बोल।
हरी हरि बोल एवरीवन, श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्लोक नंबर 63, क्रोध से मनुष्य पूर्णतः मोहित हो जाता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रम होने पर बुद्धि का विनाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने पर उसका पतन हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्रोध से मनुष्य पूर्णतः मोहित हो जाता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रम होने पर बुद्धि का विनाश हो जाता है, बुद्धि के नाश होने पर उसका पतन हो जाता है। हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स पिछले श्लोक में हमने समझा था कि क्रोध उत्पन्न कैसे होता है। संसार के लोगों से तो हमें यही समझ आता है ना कि हमने शुरू से बचपन से ही सुना होता है कि नहीं हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका जन्म कैसे होता है, इस पर विजय कैसे प्राप्त करनी है, ये हमें कुछ भी संसार में ये चीजें नहीं बताई जाती। पिछले श्लोक में ब्यूटीफुली भगवान ने हमें समझाया कि क्रोध उत्पन्न कैसे होता है, है ना। मतलब भगवान ने समझाया हमें संसार का, जब हम जरूरत से ज्यादा चिंतन करते हैं फिर व्यक्ति की संसार से अनुरक्ति हो जाती है, संसार को चीजों को पाने की चाहत बढ़ जाएगी, फिर उस अनुरक्ति से कामनाएं उत्पन्न होती हैं, है ना। फिर जब व्यक्ति की कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ उत्पन्न होता है और लालच आता है कि अगर एक व्यक्ति की एक कामना पूरी हो जाती है तो दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती है। 10 लाख की गाड़ी ले ली तो अगली बार लगता है कि मुझे 20 लाख वाली गाड़ी लेनी है ना, बेटे ने IIT IAS कर ली तो फिर लगता है कि उसकी शादी किसी अच्छी लड़की से हो जाए, उसको जॉब अच्छी मिल जाए, तो हमारी कामनाएं मतलब लिस्ट गोज होना चलती रहती है ना। लेकिन जब व्यक्ति की कामनाएं पूरी नहीं होती, कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है कामनाओं को पूरी होने में, तो क्रोध उत्पन्न होता है। अब भगवान इस श्लोक में हमें बता रहे हैं कि क्रोध से आगे क्या होता है, आगे की हमारी स्टेजेस बता रहे हैं। एक तो क्रोध आ गया, अब भगवान कह रहे हैं कि क्रोध से एक व्यक्ति मोहित हो जाता है, मतलब मूड भाव आ जाता है उसमें, है ना। फिर उस मोह से, उस मूड भाव से एक व्यक्ति की स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का विनाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। देखो अब ये मोह क्या है, भगवान कह रहे हैं कि क्रोध से पूर्णतः मोहित हो जाता है, मूड भाव उत्पन्न होता है। देखो यहाँ जब हमें क्रोध आता है ना किसी चीज या प्राणी के लिए, मतलब जब हमारी अटैचमेंट्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, और जब वो मनोकामना पूरी नहीं होती, तो फिर वो हमें गुस्सा आ जाता है, और फिर उसको पाने की इच्छा और ज्यादा प्रबल हो जाती है कि मुझे तो पाना ही पाना है ना। क्योंकि क्रोध के कारण उसमें अहंकार भी जुड़ा होता है। देखो जैसे रावण है ना, रावण को पता था कि अगर श्री राम जी के साथ वो युद्ध करेगा तो हार जाएगा, है ना। इसलिए माता सीता के हरण के लिए वो मुनि वेश धारण कर लेता है ना। तो वो किसी भी हद तक चला जाता है, मुनि बनकर आता है। तो ये है मोह, क्रोध से पूर्णतः मोहित हो जाता है, मोह उत्पन्न होता है। मतलब मोह से एक व्यक्ति दूसरे का अनिष्ट कर देता है, इतना मोह हो जाता है दूसरे व्यक्ति को कि वो क्रोध के कारण दूसरे व्यक्ति को हानि भी पहुंचा देता है ना। इवन क्रिमिनल एक्टिविटीज हो जाती है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने है, जैसे एक लड़का लड़की मान लो एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन लड़की मान लो उसके पेरेंट्स नहीं मानते और लड़की उसको छोड़ देती है, तो लड़का कई बार गुस्से में उसको हानि भी पहुंचा देता है, एसिड वगैरह भी फेंक देता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में फ्रेंड्स, क्रोध से ना व्यक्ति का विवेक खत्म हो जाता है ना, सही गलत का ज्ञान नहीं रहता। चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट पर्सन क्यों ना हो, है ना, चाहे आपने स्क्रिप्चर्स भी क्यों ना पढ़े हो, हम सब ने, है ना, हम सबको पता होता है कि हमें रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर क्रोध आ गया तब सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है फ्रेंड्स, और इसको हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। क्रोध के वशीभूत होकर हम ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। जब हम क्रोध के वशीभूत होते हैं तो हमें धर्म अधर्म, हिंसा अहिंसा, जो भी हम स्क्रिप्चर्स में पढ़ रहे हैं, इसका कोई विचार नहीं रहता, है ना। क्रोध के कारण ही हम अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ भी उल्टी सीधी बातें कह देते हैं, इस कारण हमारे रिश्ते डैमेज हो जाते हैं, है ना। और कई बार तो बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो जाती हैं, है ना। और कई बार ज्यादा क्रोध के कारण उसके परिणाम इतने भयानक हो जाते हैं, मतलब किसी की लाइफ भी डैमेज हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी के हस्बैंड को बहुत क्रोध आता है ना, वो हाथ उठाता है अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर, है ना, तो वाइफ की जिंदगी भी खराब हो जाती है ना, और एज ए पेरेंट उनके बच्चों की जिंदगी भी खराब हो जाती है ना। तो क्रोध का एक एग्जाम्पल है ना, ज्यादातर घरों में ऐसा होता है ना। क्रोध से आत्मा का पतन हो जाता है एक्चुअली फ्रेंड्स, क्योंकि आत्मा का उत्थान तभी होगा जब हम विवेक को जागृत रखेंगे, और जो ये विवेक है बुद्धि में होता है, जो विवेक है ना, विवेक से ही हम समझ पाते हैं कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए ना, कैसे काम करने हैं हमें, है ना, अपना उद्धार कैसे करना है, जगत कल्याण में मैं कैसे थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट लूं, है ना। तो मोह आने से इन सब बातों की स्मृति नष्ट हो जाती है फ्रेंड्स। जो भी ज्ञान होता है ना हमारा, वो सारी बातें हम भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता, है ना। और स्मृति के नाश हो जाने से विवेक खत्म हो जाता है, है ना। मतलब एक व्यक्ति सोचने समझने की उसमें कोई ताकत नहीं रहती, इससे क्या होता है, हम दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी अपनी भी पीस खत्म हो जाती है फ्रेंड्स। और हम ऐसे ऐसे पाप कर्म कर बैठते हैं जिससे हमारा भी नाश होता है और दूसरों का भी हम अहित कर बैठते हैं। छोटी सी बात हुई होगी बेशक, है ना, और वो इतनी बड़ी बन जाती है कि हम दूसरों का भी अहित कर देते हैं, है ना। तो इस पतन से बचने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता है फ्रेंड्स, परमात्मा से जुड़े रहना। मतलब इसलिए हमें डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन में आना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव मतलब जो भी हम फालतू समय देते हैं अपने आप को, इधर की बातें, उधर उधर की बातें, इधर घर में लड़ाई झगड़े, रिश्तेदारी में लड़ाई झगड़े, है ना, तो मतलब खाली दिमाग शैतान का घर ना। तो अपने आप को फालतू समय नहीं देना फ्रेंड्स, बचना है इससे। जितना ज्यादा हम संसार से आसक्ति लगाएंगे, जितना ज्यादा हम संसार के बारे में सोचेंगे ऑटोमेटिकली है कि हमारी अटैचमेंट्स बनेंगी, वर्ल्डली डिजायर्स बढ़ेंगी, और जब डिजायर्स पूरी नहीं होती हैं तो फिर क्रोध आएगा। इससे बचने का, क्रोध से बचने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है भगवान का साथ, भगवान को अपनी बुद्धि में रखना, भगवान का नाम जप करना, भगवान से जुड़े रहना, है ना। और अगर मान लो फंस जाते हो कि गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि आप फंस जाते हो, और ऐसी सिचुएशन बहुत बार आती है हमारे साथ फ्रेंड्स, है ना। तो हमें ऑब्जर्व करना है कि किन सिचुएशंस में गुस्सा आता है, ऐसी क्या बातें होती हैं, या तो ऐसे कोई पैटर्न है जो बार बार आते हैं वो लाइफ में, है ना। या तो हम उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली गुस्सा करते हैं, या कई बार नई नई सिचुएशंस भी आ जाती है हमारे आगे, है ना। तो जो पैटर्न्स है ना, जो हमारे बार बार आती हैं मतलब सामने, उनको ऑब्जर्व करना है, उन सिचुएशंस को ऑब्जर्व करो फ्रेंड्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप वाइफ हो और आपका हस्बैंड से आपका जबरदस्त झगड़ा हो गया, है ना, आपके हस्बैंड को गुस्सा आ गया हुआ, आपको पता है ना, आपको पता है आपके हस्बैंड अभी क्रोध में है, वो बोल रहे हैं, है ना, आपको पता है कि मैं अभी गुस्सा करूंगी तो बात बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। तो आप उस वक्त चुप रहने का डिसाइड कर लो। मुश्किल तो है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस से हम कर पाते हैं। 10 बार सिचुएशन आएंगी तो कम से कम हम स्टार्टिंग में एक बार तो कर पाएंगे, एक बार करेंगे, फिर धीरे धीरे उसका जब रिजल्ट आपको मिलेगा शांति के रूप में, फिर आप एक बार फिर और करोगे, तो ऐसे धीरे 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 प्रैक्टिस होना शुरू हो जाती है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं होता कि हमें लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, सब कुछ हो सकता है ना, सब कुछ हो सकता है। हमें पता था भगवद गीता पढ़ के हमारी लाइफ बदल जाएगी, हमें पता था। मैं अपना पर्सनली बोला तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि भगवद गीता पढ़ के अच्छा ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, इंटरनल लेवल पे, बाहर ही कुछ चेंज नहीं है फ्रेंड्स। इंटरनली जो भी आप लोग जुड़े हो, जिनकी तीसरी रीडिंग है, आप में जो भी थोड़ी बहुत, मैं बोलती 5% भी चेंजेस आई है, 10% भी चेंजेस आई है, आपके जो सोचने का ढंग जो बदला है, तो आपको क्या पहले पता था कि ये चेंजेस आएंगी। हम तो नॉर्मली एक अच्छा भगवद गीता हमें पढ़नी चाहिए, सब लोग अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, हम ही है खाली जो हम अपने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ते हैं। मैं तो इसलिए जुड़ी थी कि मुझे अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं, भगवद गीता पढ़नी है, है ना। तो हमें ये सोचना बिल्कुल फिजूल है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है ना। हम प्रैक्टिस करके क्रोध को कैसे कम करना हम ये सीख जाते हैं, है ना। ये बात हमें पहले कभी किसी ने नहीं सिखाई, लेकिन भगवद गीता में भगवान हमें क्लियरली बता रहे हैं ना, क्लियरली हमें हर चीज समझा रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे भी नहीं सीखा तो फिर किसकी गलती है, फिर जब हम सुनेंगे नहीं उनकी बातों को, मनन नहीं करेंगे, तो फिर हमारी लाइफ बदलने वाली नहीं है ना, है ना। तो हमें पता है कि अभी मेरा चुप रहना बेटर है, उस थोड़ा सा डिसाइड कर लो, और जब माहौल शांत हो जाए तो आप अपनी बात कर सकते हो, या नेक्स्ट डे बात कर लो, जब हस्बैंड ऑफिस से आ जाते हैं तब बात कर लो, या मान लो मॉर्निंग में बात हुई, आप ऑफिस चले जाते हो आपके हस्बैंड, तो आप शाम को बात कर लो, शाम को बात हुई है तो आप मॉर्निंग में बात कर लो। ऐसे अगर हस्बैंड है और आपकी वाइफ गुस्से में है तो आप थोड़ा चुप रहिए और आप बाद में बात कर सकते हो, है ना। या फिर क्या कर सकते हो आप, मान लो आप उस सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में, तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, वैसे किसी भी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, है ना, तो आप 1-2 मिनट के लिए इधर उधर हो जाइए, है ना। तो सिचुएशंस को अवॉइड करना हमने सीखना है फ्रेंड्स। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कर पाते हैं, प्रैक्टिस से हम कर लेते हैं, है ना। ज्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो क्या करना है, भगवान से प्रेयर्स कीजिए, नाम जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। माला कर लो, एक अपने नाम की कर लो कि मैं प्रभु आज मेरा गुस्सा नहीं करना चाहती, इसी के लिए मैं एक माला डेडिकेट करती हूँ आपको, है ना। भगवान से प्रार्थना करो कि प्लीज हेल्प मी, रेगुलरली ये प्रेयर्स अपनी पूजा में शामिल करनी है फ्रेंड्स, कि मैं करना चाहती हूँ, अपना क्रोध कम करना चाहती हूँ, आपसे जुड़ना चाहती हूँ, आप मेरी बुद्धि में विराजमान हो जाओ, आप मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है, मुझे कैसे अपनी लाइफ को संभालना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपने मुझे समझाना है। रेगुलरली ये प्रेयर्स करनी है, जरूरी नहीं मंदिर में भी कर सकते हो, अगर आप बेड पे बैठे हो तब भी कर सकते हो, है ना। तो जितना जितना हम प्रेयर्स करते रहेंगे, अपनी लाइफ में बैलेंस लाएंगे, है ना, सात्विक भोजन खाएंगे, वाटर इनटेक ज्यादा रखना है, एक्सरसाइज लानी है जीवन में, वॉक कीजिए, योग कीजिए, है ना। और उस पर्टिकुलर टाइम पर जब क्रोध का वेग आ रहा है ना, उस फीलिंग को ऑब्जर्व करो, है ना, समझो उस पैटर्न को कि अच्छा, मतलब उस फीलिंग को समझ लिया ना आपने कि अच्छा पता तो चल ही जाता है कि मुझे क्रोध आने वाला है ना बहुत ज्यादा, उसमें हमें उस सिचुएशन से दूर रहने की कोशिश करनी है फ्रेंड्स, है ना। अगर हमने ये 1-2 मिनट का वेग है ना, इसको कंट्रोल करना सीख लिया ना, सिर्फ 1-2 मिनट की बात होती है फ्रेंड्स, वो 1 मिनट 30 सेकंड निकल गए ना अगर, तो हमारे रिश्ते डैमेज होने से बच जाते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो हमें ऑब्जर्व करना है कि हमारा गुस्सा क्यों आ रहा है, किन बातों से आ रहा है, वो सेम पैटर्न्स है कि डिफरेंट डिफरेंट वेज से आता है ना। डिफरेंट डिफरेंट वेज को तो हम चलो
वो तो कभी कभी आता होगा, लेकिन जो सेम पैटर्न पे आता है तो वो ज्यादातर रोज ही होता है वो वाला पैटर्न, है ना। तो जो ये पैटर्न हमारे जो लगातार चल रहे होते हैं ना, इसको हम ही, एक बंदा भी सोच ले ना फ्रेंड्स कि मैंने इनिशिएटिव लेना है घर को सुधारने में, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ डील करने में, या खुद को डील करने में, खाली एक व्यक्ति भी सोच लेना फैमिली में, तो फ्रेंड्स हम प्रैक्टिस से ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। हम अपने क्रोध को, क्या दूसरे के क्रोध को भी मैनेज करना सीख लेते हैं, है ना। तो भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़कर ही हम अपने विकारों से, इस क्रोध की भयानक वाली बीमारी से दूर रह सकते हैं फ्रेंड्स, बच सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो नीना जी। हरी बोल।
हरी हरी बोल जी। श्लोक नंबर 64। परंतु आत्म संयमी मनुष्य राग व द्वेष से रहित अपने में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों का भोग करते हुए भी भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, श्लोक नंबर 64। परंतु आत्म संयमी मनुष्य राग व द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों का भोग करते हुए भी भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है। हरी बोल।
थैंक यू सो मच नीना जी। तो फ्रेंड्स, भगवान जी हमें इस श्लोक में हमें समझा रहे हैं कि जो आत्म संयमी मनुष्य होता है, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया होता है ना, तो भगवान हमें इस श्लोक में अपने इंद्रियों को वश में करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कई श्लोकों में हमें भगवान इंद्रियों को वश में करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, क्रोध का जन्म ही किससे होता है, जब हम इंद्रियों के विषयों का निरंतर विचार करते रहते हैं, है ना। जो भी इंद्रियां हमारी जो देखती हैं, जो सुनती हैं, जो पढ़ती हैं, उसके द्वारा जो भी हमारे विषयों में आसक्ति होती है ना, उसी से कामनाएं उत्पन्न होती हैं कि मैं किस प्रकार बस भोग लूं अपनी इच्छाओं को, है ना, और उन कामनाओं से क्रोध जन्म लेता है। तो अल्टीमेटली बात कहां से निकली कि इंद्रियों की, कि इंद्रियों को वश में अगर हम कर लेंगे, है ना, तो फालतू विचार हमारे अंदर आएंगे ही नहीं। अगर हम भगवान से जुड़ेंगे, भगवान से जुड़ी बातें सुनेंगे, भगवान से जुड़ी कथाएं सुनेंगे, भगवद गीता सुनेंगे, तो फिर संसार की बातें हमारे अंदर कम आती है फ्रेंड्स। देखो, दो ही चीजें हैं, या तो हम संसार का चिंतन करें, या हम भगवान का चिंतन करें। जब एक व्यक्ति भगवान का आश्रय नहीं लेता, तब वह संसार का आश्रय ले लेता है ना, उसको लगता है कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स इस संसार के माध्यम से दूर हो जाएगी। देखो, या तो हम संसार का चिंतन करते हैं, या हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, है ना, क्योंकि भगवान का चिंतन हमें किसी ने आदत नहीं डलवाई हुई है ये। जब हम भगवान का चिंतन नहीं करते तो दूसरा बचता ही संसार है। तो भगवान इस श्लोक में हमें समझा रहे हैं कि जो आत्म संयमी मनुष्य होता है, जिसने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हुआ है, जो व्यक्ति राग व द्वेष से रहित है, राग मतलब आसक्ति, है ना, अनुरक्ति। आपने मान लो किसी व्यक्ति को अपना फ्रेंड बना लिया, मतलब आप उससे बहुत अटैच होगी, और आप उससे रिलेटेड सारे लोगों को से आप अटैच हो जाते हो, है ना। और द्वेष मतलब आपका कोई दुश्मन है, आपने किसी को दुश्मन बना लिया, या आपके फ्रेंड का कोई दुश्मन है तो आपने उसको भी दुश्मन मान लिया, है ना। तो मैक्सिमम संसारी लोग फ्रेंड्स राग द्वेष में ही अटके रहते हैं, है ना। ये मेरे अपने हैं, ये मेरे पराए हैं, मतलब दो पक्ष हमने अपने माइंड में सेट कर लिए होते हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे पराए हैं। लेकिन स्पिरिचुअली एडवांस्ड लोग फ्रेंड्स राग द्वेष से ऊपर हो जाते हैं, उनके लिए अपना पराया कुछ नहीं रहता, है ना। तो भगवान भी हमें यहाँ यही समझा रहे हैं श्लोक में कि जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो राग द्वेष से परे हो गया है, वो विषयों का भोग करता हुआ भी, मतलब वर्ल्डली लाइफ को वो एंजॉय भी कर रहा होगा बाहर से, विषयों का भोग मतलब वो वर्ल्डली लाइफ को, जो भी उसको कंफर्टेबल लाइफ मिली है, उसका तो भोग करता दिखेगा ही आपको बाहर से। बहुत बार हम सोचते हैं कि भगवान से जुड़ने का मतलब क्या होता है, कि जब हम सब चीजों को छोड़ देंगे, है ना। लेकिन फ्रेंड, बदलाव अंदर से आते हैं, बाहर से नहीं। कितने बड़े बड़े राजा हुए हैं, है ना, जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, सारी सुख सुविधाएं थी उनके पास, है ना। तो ऐसा तो नहीं था ना कि उन्होंने चीजों का त्याग कर दिया, है ना। देखो, ध्रुव जी महाराज थे, उन्होंने अपने लिए राज्य मांगा था भगवान जी से, है ना। तो भगवान ने उनको ये नहीं कहा, ये थोड़ी कहा कि तुम जंगलों में चले जाओ, वहां पे मेरी भक्ति करो, है ना। तो भगवान ने उनको यही आज्ञा दी थी ना कि तुम अपना राज्य संभालो और अपने ड्यूटीज को अच्छे से पालन करो, अपने जो राज्य है, राज्य के लोग हैं, उनकी अच्छे से देखभाल करो, अपने ड्यूटीज को बेस्ट वे में करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, है ना। सारे पांडव इनका एग्जाम्पल है, राज्य का सुख भोगा इन सब ने, क्योंकि इन लोगों को फ्रेंड्स ट्रू भक्ति का, धर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर था। इंटरनली ये इंद्रियों को वश में कर चुके थे, राग द्वेष से परे हो चुके थे, मतलब इंटरनली प्रोसेस है ना ये सारा, भक्ति का प्रोसेस इंटरनली है। बाहर से आप किसी को जज नहीं कर सकते, बाहर से हो सकता है कि कोई भगवान की पूजा पाठ नहीं कर रहा है, लेकिन वो इंटरनली वो सारे काम ही जो भगवान ने हमें साइंड किए हुए हैं, जो भगवत गीता में हमें बताई गई हैं बातें, वही वो कर रहा है ना। हो सकता है आपको वो भक्ति करते ना दिखे, मंदिर जाता हुआ ना दिखे, है ना, लेकिन हो सकता है इंटरनली वो भगवान से भी ज्यादा अटैच हो, है ना। इसलिए लोगों को बाहर से देखकर हम ये पता नहीं लगा सकते कि वो स्पिरिचुअली कितना एडवांस्ड है व्यक्ति, है ना। इसलिए हमें किसी की निंदा नहीं करनी है फ्रेंड्स। ये लोग केवल भगवान से जुड़े रहकर सेवा भाव से अपने कर्म करते थे, है ना। इतनी सारी लग्जरियस लाइफ थी इनकी, तो इन सारे भोग विलासों के बावजूद भी वो इंटरनली ट्रांसफॉर्म्ड थे। उनको पता था, अपने कर्तव्यों का ज्ञान था, लिप्त नहीं थे वो अपने भोगों से, ठीक है। भगवान ने उनको कंफर्टेबल लाइफ दी है, वो उन भोगों को दूसरों के लिए भी यूज करते थे, अपने लिए भी यूज करते थे, जिनकी मदद कर सकते थे ऐसे राजा लोग, है ना, उनकी मदद भी करते थे। और भगवान ने अगर उनको कंफर्टेबल लाइफ दी है, अगर उनको कंफर्ट मिले है लाइफ में, है ना, मेहनत किया तो मिले है ना कंफर्ट, तो वो भोगों का यूज भी करते थे, लेकिन उसमें घुस नहीं जाते थे, उन भोगों से लिप्त नहीं हो जाते थे, है ना। तो हमें भी अपने इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशंस पर ध्यान देना है। क्या बताया गया बातों को, उन बातों को समझना है। अब समझ लिया कि ठीक है, अब हमें इंटरनली ट्रांसफॉर्म होना है, तो इसका मतलब क्या है? अपनी इंद्रियों को संयम में लाना है ना। अब हमारी इंद्रियां कुछ भी देखती रहे, कुछ भी खाती रहे, कुछ भी सुनती रहे, तो थोड़ी इंद्रियां ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, इंद्रियां थोड़ी हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। फिर वही चीजें हमारे अंदर जाती है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, वही चीजें हमारे अंदर जाएंगी ना, उसी से हमारे विचार बनते हैं फिर, है ना। इसलिए इंद्रियों को संयम में लाने की बात बार बार कह रहे हैं भगवान। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि कौन सी चीजों को हम अंदर डालना है, कौन सी चीजों को हमें पढ़ना है, कौन सी चीजों को हमें देखना है ना। ये इंद्रियों को संयम में लाना फ्रेंड बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम बस इतनी बात से भी अगर समझ लेना कि कुछ भी मनगढ़ंत देखते नहीं जाना, कुछ भी मनगढ़ंत सुनते नहीं जाना, कुछ भी मनगढ़ंत पढ़ते नहीं जाना, कुछ भी मनगढ़ंत अपनी वाणी से बोलते नहीं जाना। संयम में लाना मतलब हमें पता होना चाहिए कौन सी चीजें हमें, अब फोन ही है मान लो हमारे पास, है ना, स्क्रॉल करते रहते हैं, हमें हैबिट पड़ी होती है ना, कुछ भी देखते हैं हम, उसमें बहुत सारी चीजें होती है फ्रेंड्स। मतलब अगर आपको पता नहीं ना हो ये इंद्रियों वाला कॉन्सेप्ट, तो हम कुछ भी जो भी आएगा ना उसको स्क्रॉल करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, जो चीजें आप देख रहे हो नहीं मैं, आपको मजा आने शुरू हो जाता है ना, वही बातें फिर आपके अंदर रहेंगी, वही बातें फिर आप बोलोगे, है ना। तो भगवान हमें क्लियर बता रहे हैं कि मैं अपने इंद्रियों को संयम में लाओ, राग द्वेष से बचो, है ना, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, इस भाव से बचो, है ना। और फिर अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तो हमें विषयों का भोग भी करना पड़ेगा, है ना। तो प्रसाद रूप से अगर कंफर्ट मिले हैं तो घमंड में नहीं आ जाना फिर। अगर भगवान ने कंफर्टेबल लाइफ दी है, सक्सेस मिली है आपको, कंफर्ट मिले हैं लाइफ में, प्रसाद रूप में उनको ग्रहण करना है, अपना भी भला करना है और दूसरों का भी भला करते हुए चलना है। लेकिन मेन फोकस क्या होना चाहिए अगर कंफर्टेबल लाइफ है, तो भगवान पे, भगवान के साथ कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एथिकली अपनी लाइफ परफॉर्म करनी है, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, भगवान के साथ जुड़े रहना है। कुछ भी हो जाए लाइफ, 50 लाख की, 50 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी आ जाए, 50 करोड़ का चाहे घर मिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान को नहीं भूलना। कितने भी कंफर्टेबल लाइफ हो जाए, ये हमेशा याद में रखना है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, है ना। तो जब हम रेगुलरली चलते रहेंगे, तो अपने आप ये चीजें समझ आनी शुरू हो जाती है फ्रेंड्स, है ना। जो ये बातें बताई जाती है ना हमें कि नई नई चीजों को छोड़कर ही कृपा मिलेगी, तो वो कम से कम हमारे लिए ये बात तो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम को फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, है ना। उनकी लाइफ बहुत अनकंफर्टेबल होती है, हम सोच भी नहीं सकते, एक दिन भी नहीं बिता सकते उनके जैसा जो साधु संत अपनी लाइफ लीड करते हैं, है ना। लेकिन अगर हम लोग गृहस्थ आश्रम फॉलो कर रहे हैं, तो कम से कम ये तो हम सोच ही सकते हैं ना कि हमें कोई भी काम करना, हमें भगवान से जुड़े रहकर काम करना है, एथिकली अपनी लाइफ परफॉर्म करना है ना। कुछ कुछ भी चेंजेस अगर आप लेकर आए ना अपने इंटरनल, मान लो आपने इंद्रियों कंट्रोल कर लिया थोड़ा थोड़ा, आपने अपने आप को ये सोच लिया कि नहीं यार, जो फोन में मैं स्क्रॉल करती रहती हूँ, मेरे को ढंग की चीजें देख लेनी है, चलो मैं आधा घंटा फोन पे लगाना अगर मैंने, तो चलो क्यों ना किसी स्पिरिचुअल गाइड को मैं सुन लेती हूँ, है ना, क्यों ना मैं अपने गोलोक एक्सप्रेस में जाके कहीं पे जो आजकल सत्संग चल रहे हैं, 2024 ईयर चल रहा है, तो उन्होंने 24 मेन श्लोक लिए हैं, है ना, तो क्यों ना मैं उनको सुन लेती हूँ, है ना। या कोई भी आपको स्पिरिचुअल गाइड जो अच्छे लगते हैं, आप उनकी कुछ भी कोई सत्संग अटेंड कर लो उनका, है ना। तो आपने क्या किया, आपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया ना, कि आप फालतू जो आप शॉपिंग कर रहे हो या किसी के घर जाना है आपने या आपने सोना है, तो आपने क्या किया, कुछ ढंग की चीजें देख ली, या फोन में जो स्क्रॉल कर रहे हो फालतू चीजें, ये सोचा कि नहीं यार मुझे ये नहीं देखना, उसको ब्लॉक कर देना है उन साइट्स को, ताकि वो साइट्स आपके फोन में आए ही ना। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है ना। जब हम इंद्रियों को कंट्रोल करने के बारे में सोच लेते हैं ना फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा भी चाहे, अगला प्रोसेस अपने आप ही होने शुरू हो जाता है, एक लास्ट में हम पहुंच जाएंगे बिल्कुल ही कि जहां पे हमारा बुद्धि का नाश हो जाता है, तो उसमें फिर एक व्यक्ति का पता नहीं हो जाता है, लास्ट स्टेज है वो, फर्स्ट स्टेज है कि जब हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लें, इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे तो फालतू विचार हमारे अंदर आएंगे ही नहीं। इंद्रियों पे हमारे कंट्रोल नहीं होते, इसलिए कुछ भी मनगढ़ंत विचार हमारे अंदर आते हैं, है ना। और जब इंद्रियों कंट्रोल कर लेंगे तो जो अगली स्टेजेस हैं जिसमें एक व्यक्ति का पतन निश्चित है, फिर वो भगवान से जुड़ जाता है। तो अगर आप ये इंटरनल चेंजेस ले आए, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, राग द्वेष से परे हो गए और विषयों को भोग करके भी आप भगवान की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। देखो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा ना 62 और 63 वर्ष में क्या कहा भगवान ने, कि अनुरक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से व्यक्ति का पतन हो जाते हैं, विषयों का चिंतन करने मात्र से। और यहाँ भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि अगर अनुरक्ति नहीं रहती, मतलब राग द्वेष से रहित, है ना, अनुरक्ति नहीं रहने पर विषयों का सेवन करने से, मतलब विषयों को भोगते रहते हुए भी भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। मतलब वहां पे एक व्यक्ति विषय का चिंतन कर रहा है ना, और व्यक्ति का पतन हो जाता है ना। और 64 वर्ष में अगर व्यक्ति राग द्वेष से रहित हो गया, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है ना। देखो दोनों में कितना डिफरेंस है ना, मतलब एक विभाग भोग का है ऊपर वाला 62-63, और 64 में ये कैटेगरी योग की है ना। क्योंकि ऊपर वाले श्लोकों में क्या कहा है कि राग द्वेष हो अगर, है ना, तो अगर व्यक्ति विषयों का भोग करे तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। लेकिन 64 वर्ष में क्या बताया, राग द्वेष से रहित मनुष्य अगर अपने विषयों का सेवन करे, भोग करे, तो उसका पता नहीं होता, अपितु उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है ना। तो कितना बड़ा डिफरेंस बता दिया भगवान। और ऐसे भी लोग हैं कि जो लोग सोचते हैं कि घर बार छोड़कर ही कृपा मिलती है ना, तो ऐसे लोग सीमित बुद्धि के लोग हैं। ऐसे लोग भगवान को भी अपने हिसाब से डिस्क्राइब करते हैं, है ना। भगवान और भगवान की कृपा फ्रेंड्स असीमित है। अगर भगवान चाहे तो किसी पर भी कृपा हो जाती है ना। मतलब अभी इसका मतलब ये नहीं है कि विषय भोगों का ही हम लक्ष्य बना ले, लेकिन अगर आपके पास कंफर्ट्स हैं, है ना, आप बड़े घर में रहते हो, बड़ी कार में बैठते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ डरने की जरूरत है। नहीं नहीं, ये तो माया है, मैं तो स्पिरिचुअल लाइफ लीड करनी है तो मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। इसमें भगवान कह रहे हैं कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है परमात्मा का चिंतन करते रहो, है ना, ड्यूटीज को डिवोशनली करते रहो। मतलब नीड और ग्रीड में हमें डिफरेंस समझना है फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात यही है, इंद्रियों को अगर हम संयम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान की कृपा हमें अवश्य मिलेगी मिलेगी फ्रेंड्स, है ना। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घर घर मंदिर हर मन मंदिर, एवरीवन हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स आप रिव्यूज की तरफ चलते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा, या आपके कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। हरी बोल।
हाँ, हरी हरी बोल मोना दी। सबसे पहले तो सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, और इस नववर्ष में मैं कामना करती हूँ कि हम सब आपकी बताई हुई बातों को अपने मन में बिठाते हुए, समझते हुए प्रभु के रास्ते की ओर अग्रसर होंगे और अपने जीवन को सफल और शांत भी बना पाएंगे। आज का सत्संग, आप वैसे तो रोज ही सत्संग आपका जो है वो तो बहुत अच्छा होता ही है, पर आज का सत्संग भी बहुत ही अच्छा था। हम कई कई बारी, मेरे को तो ये लगता है कि आपका जो सत्संग है ना, वो एक इंस्ट्रक्शन है लाइफ को जीने के लिए। बहुत सारी बातें हैं कि हम समझते तो हैं पर पता नहीं क्यों उनको अपने जीवन में अपना नहीं पाते। जब जैसे जैसे आप बताते जाते हो तो बहुत क्रिस्टल क्लियर होता जाता है, और कोशिश भी करते हैं। और मैं श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगी कि नववर्ष में कि हम सब आप सबकी बातों को सुनते हुए, समझते हुए, और सभी को डिवोटीज के साथ 2024 का सफर भी तय करेंगे आनंद के साथ। तो आज के जो वर्सेस थे दो जो आपने कराए, उससे जो मेरी लर्निंग बनती है ना, वो ये कि सबसे पहले तो हमें जो है कि अपनी इच्छाओं को ज्यादा अधिक बढ़ने नहीं देना है। और अगर हम वो माया में फंसे रहेंगे तो हम उनको उनकी पूर्ति करने के लिए ना, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए गलत रास्तों पे भी चलना शुरू कर देते हैं अननेसेसरली, और जो अनएथिकली हम उन चीजों को ग्रैब करने की कोशिश करते भी करते रहते हैं। क्योंकि हम जब माया में फंसते हैं, और जब अगर माया से हमारी वो जो पूर्तियां नहीं होती है ना, तो उसमें हमें क्रोध भी आता है। तो हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए प्रभु की बताई हुई बातों को समझकर अपने जीवन में उतारना है और प्रभु की कृपा के पात्र बनना है। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू एज ऑलवेज सुमित जी, ब्यूटीफुली आपने भी बहुत अच्छी तरह से हमेशा की तरह बहुत अच्छी तरह से श्लोकों को अच्छे से एक्सप्लेन किया। और देख रहे, एक बार मैं आपकी करेक्ट करना चाहती हूँ, आपने कहा मेरी बताई हुई नहीं, मैं देखो कुछ भी अपनी मेरी कोई बात नहीं है, मेरे को कुछ नहीं आता है, जो भगवान ने बताई है बातें मैं कोशिश करती हूँ एज इट इज, मैं भगवान की बातों को जितनी मेरी बुद्धि है, जितना मैं निखिल जी से सीख रही हूँ, है ना, तो वो सारी बातें मैं आपको एज इट इज बताने की कोशिश करती हूँ, है ना। वो मेरी बातें कुछ नहीं है, वो सब भगवान की बातें, भगवान ने कही है यहाँ पे सारी, वो जो एक्सपीरियंसेस है वो जरूर हम बताते हैं। हाँ जी, आप बात कर सकते हो कुमार जी।
हाँ, डेफिनेटली भगवान की बताई हुई बातें हैं, पर उनको हमारे तक पहुंचाने का जो जरिया है वो तो मोना दी आप हैं। हालांकि वो जो बातें बताई गई है वो ग्रंथों में ही चाहे छुपी रहती हैं, हम वो पढ़ ही नहीं पाते अगर वो आप हमें ना बता पाते तो हमें बहुत इजी लगता है कि जब हमें बिना मेहनत किए हुए आप नटशेल में वो जैसे कहते हैं ना एसेंस निकाल के ना उसका निचोड़ निकाल के जब हमें कन्वे करते हो ना तो इजीली समझ भी आता है ना। कहीं जाना नहीं है, कहीं टाइम भी वेस्ट नहीं करना, घर में बैठना, सुविधाजनक जो अच्छे ढंग से आप बता देते हो ना तो वाकई उसका आनंद कुछ और है। उसके लिए शायद हम प्रभु ने श्री हरि ने आपको जरिया बनाया, माध्यम बनाया डेफिनेटली, तो पर आप भी हमारी शुक्रिया के पात्र हैं ही है ना।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे और इतने काइंड वर्ड्स के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत ही पीछे हूँ, मुझे अभी कुछ नहीं आता है, तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे लगातार सीखती जाऊं और जो जो बातें मैं कह रही हूँ उसको मैं फर्स्ट पहले मैं अप्लाई करूँ, तब मैं आपको बोल पाऊँ। इस तरह की मेरी इच्छा रहती है अंदर से कि नहीं, जो चीज मैं अप्लाई करती हूँ तो मुझे जरूर दूसरों को भी कन्वे करना है कि नहीं आपको भी इस तरह से कर लेना चाहिए, है ना। जैसे फोन वाली बात मैं आपको बार बार करती हूँ कि इंद्रियों को कैसे हमें कंट्रोल में करना है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना, हम लोग वही बात है, पाना तो चाहते सुखी है, खुशी पाना चाहते हैं, और पर ये खुशी हमें पता होती नहीं हमें पानी कैसे, उसके लिए हम मन गणन तरीके यूज करते हैं जो हमने आसपास के लोगों से सीखे होते हैं, है ना। तो उस तरीकों को सीख के हम दुखी हैं, सुखी तो हम है नहीं। कोई भी लाइफस्टाइल हम अपना रहे हैं, कोई भी हमारा पैटर्न है लाइफ जीने का, लेकिन वो लाइफस्टाइल अपना कर हम सुखी तो हुए नहीं, है ना। मैं अपना कहूँ तो मैं नहीं सुखी थी, है ना, मतलब परेशानियां थी लाइफ में वो वाले पैटर्न से, है ना। उसी वही चीजों को हम चिंतन करते रहते थे बार बार, वही सोचते रहना है ना, इन चीजों से कैसे निकलना है कुछ पता नहीं था, है ना। लेकिन जैसे ही भगवत गीता जीवन में आई तो उसमें भगवान ने जो जो चीजें हमें बताई है उसको धीरे धीरे जैसे समझते गए। जैसे इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात है तो कितना ब्यूटीफुली भगवान हमें समझा रहे हैं कि अगर हम इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेंगे ना, है ना, जिसके द्वारा सारी बातें हमारे अंदर जाती है ना, जो हमारी जो भी हमारी पांच इंद्रियां होती है, छठी इंद्री जो मन है, उसी के द्वारा हमारा अंदर अंतःकरण निर्मित होता है, हमारा मन बनता है, हमारा अंदर विचार बनते हैं, है ना। तो मतलब अगर हमें यही नहीं पता कि हमें कौन सी चीजें देखनी है, कौन चीज सुननी है, कौन सी चीजें पढ़नी है, क्या करना क्या लाइफ में, है ना, तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें हम सीखते हैं भगवद गीता के माध्यम से, है ना। पाना सुखी है, लेकिन वो सुख मिलता फिर हमें राइट डायरेक्शन से, है ना, भगवान के क्लियर जो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली जब हम छोटी छोटी बातों को सीखते हैं ना, तो वो जो आनंद है, वो जो प्रसन्नता है ना, वो अपने आप ही मिलती है, वो फिर चीजों की मोहताज नहीं रह जाती कि अच्छा मेरे को ये चीज मिलेगी या कोई मेरे से अच्छे से बात करेगा तब मुझे ये मुझे खुश होना है। पहले क्या होता था कि मेरे हस्बैंड खुश, मेरे रिलेटिव्स खुश तो मैं खुश, अदरवाइज मेरी खुशी तो कुछ मैटर ही नहीं करती थी, है ना। अब क्या होता है, बाहर कुछ भी हो रहा है मैं अंदर से खुश रहती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे समझ ही आ गया कि भाई कोई भी चीज परमानेंट नहीं है और मुझे खुशी कैसे पानी है, खुशी तो मेरे अंदर है, मैं बाहर ढूंढ रही हूँ इसको, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें जब हमें पता लगती जाती है ना, तो अपने आप ही भगवान से एक मतलब ट्रू सेंस में कनेक्शन बनता है ना, और उनके आगे और हम नतमस्तक हो जाते हैं कि भगवान ने हमें इस मतलब इस लायक समझा कि ये जो ज्ञान है हमें, या कुछ भी मैं बोलती हूँ, मेरे को तो अभी 5-10% ही जो समझ आ रहा है ना, तो वो कम से कम कुछ कुछ तो समझ आने लगा। थैंक यू सो मच कुमार जी। हाँ जी, कोई और जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? हरी बोल।
हरी हरी बोल मोना दी, हरी हरी बोल एवरीवन। सबको ने साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हमें ऐसे ही जोड़े रखे, अपने चरणों शरणों में लगाए रखे और इस सत्संग का हिस्सा हमें हमेशा बनाए रखे। और मैं आज की मेरी लर्निंग जो बनी है, जो मैंने लिखा, जितना मुझे समझ आया कि हम विषयों में जब लग जाते हैं ना, कोई डिजायर हमारे मन में आ जाती है तो फिर उससे मोह हो जाता है। वो जब नहीं मिलती है या लेट हो जाती है तो उससे क्रोध आ जाता है। तो क्रोध आएगा तो बुद्धि का नाश हो जाएगा। फिर अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अगर इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो भगवान कह रहे हैं कि वो कैसे होगा कि हम हर घड़ी खुद को चेक रखना है कि भाई क्या कर रही हूँ। और सत्संग के माध्यम से जो मेरी ऑलमोस्ट थर्ड रीडिंग है, तो मैंने यही सीखा है कि उठते बैठते भगवान जी का नाम जपना है, मुख पे होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं करना, अगर खाना बनाना वो तो हमें वैसे भी बनाना है, तो उसको भोग लगाना है, भोग की सेवा करनी है, एज अ प्रसाद खाना है। तो भगवान जी ने बताया कि हम जिस भाव से बनाते हैं और जिस भाव से खाते हैं, तो वो हमारे अंदर वही सोच आती है जो उसी से अच्छा बुरा पॉजिटिव रहते हैं या नेगेटिव रहते हैं। तो मैं जैसे आपसे सारा भी सीखा है मैंने। आप कहते हो ना, अभी आप कुमु जी ने इतना प्यारा रिव्यू दिया, तो आप बोल रहे हो मैं माध्यम तो दी, बहुत सारी चीजें थी, स्पिरिचुअल तो थे, मैं पढ़ती भी थी बट नहीं समझ आती थी। कोई ऐसा पर्सन होता है गॉड गिफ्टेड एज अ, वो हमें समझा रहा है, सिस्टर मेंटर जो भी कुछ था। मंदिर भी जाते थे, सत्संग भी सुनती थी, पर नहीं कभी समझ में नहीं आया डिटेल में कि भाई शुरू कहां से करना है, फिर कैसे करते जाना है। अब ये समझ आ गया भाई, कहीं बैठे हो, पहले मेरी बातें ओवर थिंकिंग रहती थी कि हाँ इसने ये बोला। आपके सत्संग के माध्यम से मैं हाथ में टेलीकाउंटर रहता या माला रहती तो ध्यान उस बातों पे नहीं जाता, चाहे मैं जितनी मर्जी नेगेटिविटी में फंसी हुई हूँ तो नहीं जाएगा। माइंड वो टेलीकाउंटर पे मेरा सेट रहते कि मैंने भूला तो नहीं मेरे को कोई वर्ड, मैंने खमका ऐसे मिस तो नहीं हो गया कि मैं इसको दबाए जा रही हूँ बटन को, राम नाम निकल नहीं रहा मेरे मुंह से, ऐसा नहीं होता है। तो भगवान जी का जब हम ये सब बातें करते हैं, स्पिरिचुअल पढ़ते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, चंटिंग कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, और किसी के लिए हमारे मन में कोई अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, इच्छा द्वेष नहीं आ रही है, तो मुझे लग रहा है मैंने आपसे ये सीखा है कि यही भक्ति है। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स एज ऑलवेज किरण जी, ब्यूटीफुली आपने भी दोनों श्लोकों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हमेशा की तरह। और थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि भगवान ने हमें चुना है, सिंपल बात है ना, कि हम उनकी भगवद गीता पढ़ रहे हैं। मुझे तो बस यही बहुत खुशी है कि भगवान ने हमें चुना है कि हम, देखो सभी तो पढ़ नहीं पाए, अब हम अपने देखें, अपने आसपास के लोग 70 ईयर्स में है, 80 ईयर्स में है, तो उन या 60 ईयर्स में है या 40 ईयर्स में है, तो उनके लाइफ में अभी तक भगवद गीता की एंट्री नहीं हुई है ना, और उनका हम लाइफ भी देख सकते हैं कैसी है, और हम अपनी लाइफ से भी कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो हमें जितनी बार भी हम भगवान का शुक्रिया करें ना, उतना कम है फ्रेंड्स। और दूसरा शुक्रिया निखिल जी का कि जिन्होंने इतना सिंपल लैंग्वेज में हमें सरल भगवद गीता समझाई, सिखाई, है ना, कि आज उनके सिखाए हुए लोग जो थोड़ा बहुत जो भी चीज आती है वो समझा पा रहे हैं। तो मतलब कृपा के पात्र है निखिल जी, और भगवान श्री कृष्ण तो है ही है सबसे पहले, है ना, जिनके लिए हम हमेशा ही थैंकफुल है, है ना, अपने दिल की गहराइयों से उनके लिए, हमारे मन में उनके लिए धन्यवाद होना चाहिए, है ना, कि आज हम इस काबिल हो सके कि हम अपना जीवन जीना सीख रहे हैं। मेरे को तो सिंपल एक ही बात आती है करने, ज्यादा बात नहीं आती मुझे करने, कि मैं अपना जीवन जीना सीख गई, है ना, भगवान कृष्ण की भक्ति से मान लो, या मान लो भगवान कृष्ण की ज्ञान से, है ना, जो उनका ज्ञान हमें दिव्य ज्ञान मिला, उनकी जो जो बातें, वे छोटी छोटी बातें मैं बोलती हूँ कि दो दो बातें मैं अपना पाई हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि पूरी भगवद गीता मैंने सीख ली और ऐसा सब कुछ मुझे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, है ना, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, है ना। सबसे गलतियां होती होंगी मुझे लगता है, मेरे से भी होती हैं, और कोशिश करती हूँ मैं कम से कम उस गलती को रिपीट ना करूँ, ये मेरे में एक चेंजेस जरूर आ चुकी है कि उस गलतियों को मैं रिपीट कम करती हूँ, है ना। मतलब पैटर्न्स को हमें खुद तोड़ना है फ्रेंड्स, जो लाइफ के पैटर्न बनाए हुए ना हमने, कोई भी कोई भी पैटर्न बनाए होते हैं हमने, बचपन से बने होते हैं हमारे, उन पैटर्न्स को ब्रेक करना पड़ता है फ्रेंड्स हमें, है ना। और जो भगवान हमें बता रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली लाइफ जीनी है, सिंपल जो जो समझ आ रहा है उसको अप्लाई करते जाओ, अगले रास्ते अपने आप खुलते चलते हैं, है ना। थैंक यू सो मच किरण जी। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम भजन की तरफ चलते हैं। आज नीना जी की भजन की टर्न है। नीना जी आप भजन गा सकते हो। हरी बोल।
हरी हरी बोल एवरीवन। हां जी, मेरी तरफ से भी सब डिवोटीज को न्यू ईयर की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरी भी सबसे पहले प्रभु श्री हरि से ये प्रेयर्स हैं कि मोना जी एज ए स्पिरिचुअल गुरु हमारा ये सत्संग यूं ही चलाते रहे, और सच में भगवत गीता के इस ज्ञान का रस हम यूं ही ताउमर मोना जी से प्राप्त करते रहे। आज का सत्संग भी मोना जी बहुत ही आनंदमय था, और आपने बड़ी ही गहराई से हमें ये दोनों श्लोक करवाए। आज के सत्संग से मेरी ये लर्निंग्स बनी हैं कि सच में इस संसार में हमें रहना है, परंतु इस संसार में रहते हुए मुक्ति कैसे मिल सकती है, तो वो मोना जी ने हमें आज ऐसे बड़े अच्छे ढंग से बताया कि हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, यानी संसार के विषयों का भोग तो करना है परंतु उनमें असक्त नहीं हो जाना है। हमें जो प्रभु ने प्रसाद दिया उसमें ही हमें खुश रहना है, उस समय हमें जो है क्रोध नहीं करना है, अपने आप में इस बात को लेके प्रभु जी को ही मतलब नहीं कोसना है कि उन्होंने ये मेरी इच्छा पूरी नहीं करी, कामना पूरी नहीं करी। और जैसे कि हमने समझा कि जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे मन में फिर काम क्रोध मोह ये सब द्वेष आएंगे। तो अब हम एज ए भगवत गीता के अब हम स्टूडेंट हैं, तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले अपने पर फोकस रखना है, अपना आत्म मंथन करना है। जैसे कि मोना जी ने बताया कि हम कर क्या रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपसे शेयर करूंगी कि जैसे कि लास्ट वीक मेरी अपना भजन की टर्न थी, तो एक दिन पहले ही मतलब मेरे मासी जी की बरसी थी, तो मैं सुबह सुबह मेरे को निकलना था, मैंने मोना जी को फोन कर दिया से, मोना जी को नहीं सॉरी ममता जी को, कि मैं आज भजन नहीं गा पाऊंगी। बट मैं वहां से जल्दी फ्री हो गई। उसके बाद मैं अपने मन के अनुसार चली और मैं अपनी फ्रेंड के वहां चली गई, कोई काम था बस। उसके बाद मोना जी से मेरी बात हुई तो मोना जी ने बोला कि आप ये सेवा कर सकते थे, तो उस टाइम तो चलो मैं मोना जी से एज ए फ्रेंड हमारे थोड़े बहुत हुए आर्गुमेंट, बट बाद में फ्रेंड मेरे को लगा, मैंने अपना आत्म मंथन समझो किया, मेरे मन में आया कि नहीं मैंने अपनी सेवा को नकारा है। तो कहने का भाव ये है कि अब जब हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, प्रभु का ज्ञान ले रहे हैं, तो सच में प्रभु हमें हर जगह हमें अंदर से आगाह करते हैं कि तुम्हारे लिए मतलब ये इस काम को प्रायोरिटी देनी थी, तुमने यहाँ गलत किया। तो बस प्रभु श्री हरि से मैं यही करूंगी, कहूंगी कि वो अपनी कृपा हम पर हमेशा ही बनाए रखें, यही प्रेयर्स करेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं अपने भजन की ओर चलती हूँ। हरी बो। ये सांसे भी तेरी, धड़कन भी तेरी, सारा ये जीवन तुम्हारा, सारा ये जीवन तुम्हारा। सांसें भी तेरी, धड़कन भी तेरी, सारा ये जीवन तुम्हारा। सबकी नैया का तू ही किनारा, सबकी नैया का तू ही किनारा, सबकी नैया का तू ही किनारा। सांसें भी तेरी, धड़कन भी तेरी, सारा ये जीवन तुम्हारा। सबकी नैया का तू ही किनारा, सबकी नैया का तू ही किनारा। बिन तेरे मोहन कुछ भी नहीं हम, बिन तेरे मोहन कुछ भी नहीं हम, बिन तेरे होना गुजारा। बिन तेरे मोहन कुछ भी नहीं हम, बिन तेरे होना गुजारा। सबकी नैया का तू ही किनारा, सबकी नैया का तू ही किनारा। जैसे कि सूखी प्यासी भूमि पे शीतल सी बूंदे उबर से, जैसे कि सूखी प्यासी भूमि पे शीतल सी बूंदे उबर से, माया की अग्नि से घायल हृदय पे रहमत ही तेरी उबर से, माया की अग्नि से घायल हृदय पे रहमत ही तेरी उबर से। दुनिया से हारे भटके हूं का तूने ही जीवन सवारा, दुनिया से हारे भटकी हूँ का तूने ही जीवन सवारा, सबकी नैया का तू ही किनारा, सबकी नैया का तू ही किनारा, सांसे भी तेरी धड़कन भी तेरी, सारा ये जीवन तुम्हारा, सबकी नैया का तू ही किनारा, सबकी नैया का तू ही किनारा। बिन तेरे मोहन कुछ भी नहीं हम, बिन तेरे मोहन कुछ भी नहीं हम, बिन तेरे होना गुजारा, बिन तेरे होना गुजारा। जीवन की नैया तेरे हवाले, तू ही है माझी हमारा, जीवन की नैया तेरे हवाले, तू ही है माझी हमारा। आंखों से आंसू चुने तूने सबके, जिसने भी तुझको पुकारा, आंखों से आंसू चुने तूने सबके, जिसने भी तुझको पुकारा, जिसने भी सौंपी ममता अहम की, उसको ही तुमने उभारा, जिसने भी सौंपी ममता अहम की, उसको ही तुमने उभारा। सबकी नैया का तू ही किनारा, सबकी नैया का तू ही किनारा, सांसे भी तेरी धड़कन भी तेरी, सारा ये जीवन तुम्हारा, सारा ये जीवन तुम्हारा। बिन तेरे मोहन कुछ भी नहीं हम, बिन तेरे मोहन कुछ भी नहीं हम, बिन तेरे होना गुजारा, सबकी नैया का तू ही किनारा। सांसे भी तेरी धड़कन भी तेरी, सारा ये जीवन तुम्हारा, सबकी नैया का तू ही किनारा, सबकी नैया का तू ही किनारा। हरी हरि बोल जी, हरी हरि
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 बोल एवरीवन हरे हरे बोल हर मन मंदिर जय श्री राधे कृष्ण हरे बोल।